ओम शांति। बाप दादा ने हम सब बच्चों को सदा सफलता के सितारे के रूप में देखा है। कई अव्यक्त मुरलियां बाबा की चली है कि जिसमें बाबा हर बच्चे को सफलता के सितारे के रूप में देखते भी हैं, और अगर कोई उम्मीदवार सितारा होता है तो उसको भी बाबा अपनी सकाश और शक्ति भर करके सफलता मूरत बना ही देता है। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को विधि भी बताते हैं कि सदा सफलता मूरत बनना हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चे खुद पुरुषार्थ नहीं करते हैं और सफलता मूरत नहीं बनते हैं तब तक हमें वो खुशी प्राप्त नहीं होती है। अगर सहजता से ही मिल जाता होता तो कोई बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते, और इसलिए बाबा शक्ति सकाश भी भरता है, हमें उस रूप में देखता भी है, लेकिन पुरुषार्थ हमसे ही करवाता है। और वो पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष चार आधार बताए हैं सदा सफलता मूरत बनने के लिए। पहला आधार जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते रहे हैं वो है निश्चय बुद्धि विजयंती, कि निश्चय ही मनुष्य को विजय की वो फाइनल डेस्टिनेशन पर या उस शिखर पर पहुंचा देता है। दूसरा आधार जो बाबा ने बताया कि दृढ़ता में सफलता है। कैसे? दृढ़ संकल्प हमें हर बात में सफलता मूरत बनाई देता है। तीसरा बाबा जो कहता है वो है नियत साफ तो मुराद हासिल, कि नियत में कहीं भी खोट नहीं होनी चाहिए, नियत हमारी एकदम साफ होनी चाहिए तो हर मुराद हासिल हो जाती है। और चौथी बात जो बाबा ने कही, सफल करो और सफलता पाओ। तो चार ये मुख्य आधार है सफलता मूरत बनने के लिए। जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, तो सबसे पहला आधार यही होता है कि जब तक हम अपने अंदर निश्चय नहीं कर लेते, उसमें भी जैसे बाबा हमेशा चार प्रकार के निश्चय बताते हैं कि एक तो स्वयं में निश्चय अर्थात एक आत्मविश्वास हमारे भीतर होना चाहिए, दूसरा हमारा बाबा में भी उतना ही 100% विश्वास हो, तीसरा जैसे बाबा कहते हैं कि रामा में भी निश्चय हो, और चौथा ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो। कई बार हम स्वयं में आत्मविश्वास को धारण करते हुए आरंभ करते हैं, लेकिन फिर कहीं न कहीं हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उसका कारण यही है कि जब हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है, विजयी स्थिति का अनुभव करना है, तो नेचुरल है कि हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और विश्वास है स्वयं हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, बाबा भी कहता है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं आगे चल करके वो विश्वास हमें डगमगाने जैसी स्थिति में भी ले आता है, क्योंकि मुझे लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। एक तो जैसे हमेशा हमारी दादी कहती है, क्लीन और क्लियर माइंड होना चाहिए। जितना हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्लैरिटी है हमें, तो किस तरह से कदम बढ़ाने हैं वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कहीं पर भी दुविधा नहीं होगी। दुविधा का कारण यही है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो जब कभी दो बातें आती है तो वहां चुनाव करने में हमारा मन डगमगाता है, अब ये करे या ये करे। इसीलिए अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो जब कभी दो राहें आई भी, जहां भी, तो भी हमें पक्का मालूम है कि मुझे कहां जाना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग जो हमें प्राप्त होता है वो है श्रीमत, बाबा की श्रीमत हमें हर बात में स्पष्टता प्रदान करती। निश्चय तभी हिलता है जब हम उस दो राह में श्रीमत और स्वार्थ को समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए कई बार कई लोग स्वार्थ को चुन लेते हैं, समझते हैं कि नहीं नहीं चलेगा ये, तो वहां श्रीमत इग्नोर हुई, स्वार्थ को महत्व मिला, तो आगे चल करके वो स्वार्थ हमें कहीं न कहीं डगमगाएगा ही। इसलिए श्रीमत का हाथ पकड़ करके जब चलते हैं तो वो स्वार्थ कभी भी जो माया का रूप बन करके सामने आता है, क्योंकि जब कभी आप कदम बढ़ाएंगे तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि माया परीक्षा तो लेने आएगी ही आएगी, और इसीलिए माया को परख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ के रूप में आती है। जब स्वार्थ के रूप में आए तो सोचते चलता है, हमें भी तो फायदा होगा ये करने में, तो श्रीमत साइड हो गई, स्वार्थ को पहला ले लिया, और इसीलिए अहम दे महत्व दे दिया, तो नेचुरल है कि वो हमें आगे डगमगाएगी। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि अंतिम परीक्षाएं भी जो आएगी आपके निश्चय की ही परीक्षा होगी, निश्चय के ही फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेंगे। यानी ब्राह्मण जीवन के अंदर निश्चय का फाउंडेशन हमारा जितना पक्का होगा उतना ही हम सफलता मूर्त हर प्रकार की परीक्षाओं में, हर प्रकार की माया की चाल में भी हम सफल होंगे ही, विजयी होंगे ही। लेकिन जब कभी हम सोचते बाबा में हमारा विश्वास तो है ही है, निश्चय बुद्धि तो है ही है, तभी तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जब ब्राह्मण बनने के बाद भी कभी कोई बात आई और बाबा को स्मृति दिलाना हम शुरू करते हैं, बाबा आपने तो कहा था ना, ये बाबा ने ये बात कही है, इस बात को लेकर के हमें चलना है, तो इसीलिए जब वो बात बाबा को, या इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं बाबा में निश्चय की कमी है। ड्रामा में जो सीन आती है परीक्षा के रूप में, शायद वो सीन हमें सफलता मूर्त बनने में अनुभवी बनाने वाली है, यही सफलता है। लेकिन वहां भी कभी कभी हम उस दृश्य को देख करके हिल जाते हैं कि हमने निश्चय के आधार पर शुरू किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जहां पर भी क्वेश्चन आया माना निश्चय हिला, क्योंकि निश्चय माना ही फुल स्टॉप, बिंदी। निश्चय माना ही वाह वाह के गीत गाने वाले। इसलिए बाबा ने कहा था कि कोई भी अगर सीन बुरी भी होंगी, लेकिन अगर आप वाह वाह के गीत गाएंगे तो वो सीन भी वाह वाह बन जाएगी, है ना? तो इसीलिए कहने का भावार्थ यही है कि जहां क्वेश्चन आया क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, माना निश्चय का फाउंडेशन हिला, तो वो सफलता मूर्त बनने नहीं देंगी। निश्चय माना बिंदी, विश्वास माना बिंदी, वहां कोई भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क हो नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा पहला फाउंडेशन सफलता मूर्त बनने के लिए है निश्चय बुद्धि विजय। दूसरा फाउंडेशन जो बाबा ने कहा दृढ़ता में सफलता, यानी दृढ़ संकल्प करना बहुत आवश्यक है। दृढ़ संकल्प को लेकर के जब करता है कोई भी इंसान तो सफलता उसका गले का हार बन जाती है, सफलता उसको वो माला जरूर पहनाती है। दृढ़ संकल्प में वो ताकत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हो तो दृढ़ संकल्प करो। जब कभी आप देखो कि आपके अंदर कोई कमजोरी है, जो कमजोरी कोई ना कोई रूप से विघ्न क्रिएट कर रही है, विघ्न रूप बन रही है आपके पुरुषार्थ के मार्ग में, और उसको आप समाप्त करना चाहते हो तो दृढ़ संकल्पधारी बन जाओ, और दृढ़ संकल्प कर लो तो परिवर्तन हो ही जाएगा, और वो परिवर्तन आपका, आपकी जो रुकावट है उस रुकावट में जैसे एक बूस्टर का काम करेगा, एक धक्का दे करके हमें आगे बढ़ा देगा। लेकिन कई बार देखा गया कि मधुवन में आते हैं, दृढ़ संकल्प तो करते ही है, विशेष कोई दिन होता है तो उस विशेष दिन पर हम बाबा के कमरे में जाकर के भी दृढ़ संकल्प करते, अमृत वेले बैठ करके विशेष दृढ़ संकल्प करते, लेकिन दिन भर में क्या होता है या कुछ समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला हो जाता है, और ढीला होते 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 वापस वो कमजोरी हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। तब कभी कभी आता है कि मधुबन में जाके दृढ़ संकल्प किया, अमृत वेले बाबा से विशेष शक्ति प्राप्त किया, सकाश भी लिया, फिर भी ये कमजोरी तो निकली नहीं, ये कमजोरी तो वापस आ गई, तो सोचते हैं कि पता नहीं हमारे में दृढ़ संकल्प करने की शक्ति नहीं है, या हमारे संकल्पों में वो दृढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, संकल्पों में दृढ़ता है तब आप ब्राह्मण बने, इतना याद रखना। ऐसे ही ब्राह्मण नहीं बने हैं, जिनके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है उनको ज्ञान अच्छा लगते हुए भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। शांति। तो इसीलिए हम ये देख रहे थे कि संकल्पों में दृढ़ता है तब आप ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनना साधारण बात नहीं है, बहुत दृढ़ता चाहिए। आज बाबा ने जितनी भी मर्यादाएं हमें बताई है, चाहे वो पवित्रता की मर्यादा है, तो दृढ़ संकल्प से ही पवित्रता को अपनाया है ना। आज कोई भी आपको मजबूर करे भी तो भी आप अपनी पवित्रता की धारणा नहीं तोड़ते हैं, तो है ना दृढ़ता। खान पान की जो शुद्धि रखी है कोई कितना भी आपको फोर्स करे कि प्याज लहसुन वाला खा लो, ये खा लो, अशुद्ध भोजन खा लो, खाएंगे नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? तो दृढ़ता जिसके अंदर है वही ब्राह्मण बनता है, बिना दृढ़ता के वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्राह्मण बनने में बहुत दृढ़ संकल्प करने की शक्ति चाहिए। इसीलिए कई लोगों को ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन वो नहीं बन सकते हैं, ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं। बहाना चाहे कोई भी बता दे वो, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है जो हम ये शुद्धि अपने जीवन के अंदर अपनी धारणाओं में अपना सके। तो इसीलिए दृढ़ संकल्प है तभी आप ब्राह्मण बने हैं। अब छोटी छोटी कमजोरी के लिए अगर आप ये कहो कि मेरे अंदर दृढ़ संकल्प करने की ताकत नहीं है तो कौन मानेगा? कोई मान सकता है? क्योंकि पवित्रता की धारणा के बाद तो हमारे संकल्पों में और ताकत बढ़ जाती है। पवित्रता की धारणा से हमारे संकल्पों में और ताकत आ जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ समय पहले हमने कुछ जैन साधुओं से बातचीत हो रही थी, तो ऐसे ही बात करते पूछा उनको कि आप लोग चलते रहते हैं, उसके बदले वाहन का प्रयोग करो तो आप जहाँ जाएंगे सहजता से पहुँच करके कितने लोगों को आप अपनी जो बातें हैं वो समझा सकेंगे, सुना सकेंगे, अपने धर्म की वृद्धि कर पाएंगे। तो उस समय जो भाई था, साधु था भाई, उसने बहुत अच्छी बात कही कि चलने के पीछे हमारा एक कारण है। हमने पूछा कि ये तो यही कारण है ना कि आप साधनों का, सुख सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, यही कारण है? बोला नहीं, ये कारण नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या कारण है? तो कहा कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि अगर वो ताकत को सही तरीके से यूज न किया जाए तो वो मानसिक असंतुलित हो जाता है। इसलिए वो ताकत यूज करनी पड़ती है। और यूज कैसे करे ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत? तब कहा कि ये पैदल जो चलते ताकि उसको यूज करते हैं ताकि वो मानसिक असंतुलन न आए। और बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि बच्चे उसको यूज करनी है तो कैसे यूज करनी है? सेवा करो। इसलिए बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत घड़ी तक चलेगी आपकी। तो सेवा में हम क्या कर रहे हैं? अपने उस ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति को यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये ताकत को हजम करना आसान नहीं है और इसीलिए ये हमारे संकल्पों को इतना बल देता है, इतनी शक्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ये हो नहीं सकता है कि वो नहीं कर सके। तो दृढ़ता ब्राह्मण बनने के बाद और भी बढ़ गई है। देखो दुनिया में कोई दृढ़ संकल्प की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो ब्रह्मचर्य व्रत का बल नहीं होता है, तो दृढ़ संकल्प करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करने के लिए, विल पावर को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं कि भाई हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल है। तो जैसे नवरात्रि आती है तो 9 दिन का उपवास करते हैं। क्यों करते हैं ये 9 दिन का उपवास? क्योंकि ये उपवास जब व्यक्ति करता है तो वो अपने मनोबल को बढ़ा देता है, अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति को डेवलप करता है। तो हमने तो कितनी चीजों का उपवास किया हुआ है, कोई एक उपवास थोड़ी है हमारा, कितनी चीजों का उपवास है। तो कितनी दृढ़ता की शक्ति हमारे में आनी चाहिए। खान पान का उपवास है हमारा, अशुद्ध भोजन का उपवास है, पवित्रता को धारण किया है तो ब्रह्मचर्य व्रत का उपवास है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब को छोड़ने के लिए जो हम विधि अपना रहे तो उपवास नहीं। और सबसे बड़ा उपवास हमारा उपवास, ऊपर निवास करने वाले शिव बाबा के साथ हमारे बुद्धि का वास रहता है, सबसे बड़ा उपवास है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा सबसे बड़ा उपवास है। तो ये उपवास से बाबा की याद की शक्ति से कितनी हमारे अंदर दृढ़ता आती है। और फिर भी अगर कोई कहे मेरे में दृढ़ता ही नहीं है, मैं कितनी बार संकल्प करती हूँ टूट जाता है, कोई मानेगा? कोई मानेगा? कोई यही कहेगा आप गलत बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो? आप जब इतनी चीज कर सकते हैं तो उसके बाद तो व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता आ जाती है। तो इसीलिए जीवन के अंदर जिस तरह का उपवास हमने किया है, हमारे जैसा उपवास कोई नहीं कर सकता है। तभी तो कोई साकार बाबा के पास भी जब आए थे तो किसी ने बाबा से कहा साकार उन दिनों में कि बाबा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन ये नियम जो है ना, अगर आप नियम हटा देंगे ना तो इतनी वृद्धि हो जाएंगी जो बात मत पूछो। बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा हमको क्वांटिटी थोड़ी चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए। तो सोचो इतने क्वालिटी बाबा के बच्चे हैं, ये अगर मिलकर के कोई संकल्प कर ले इकट्ठा तो क्या नहीं है, तहलका मचा सकता है ना, तहलका। लेकिन हम एक मत होकर के एक ही संकल्प में स्थित नहीं हो पाते, ये इसलिए हमारी शक्ति रहे। कोई कौन सा संकल्प कर रहा है, कोई कौन सा संकल्प कर रहा है, कोई कौन सा, कोई हद के मामूली संकल्प करते रहते हैं, बाबा ये मिल जाए वो मिल जाए। और ये अनुभव किया है कि जब भी आपने कोई मामूली संकल्प भी किया है कि बाबा कोई ये मिल जाए या वो मिल जाए, इतना मिल जाए तो बहुत अच्छा, मिला है कि नहीं मिला है, संकल्प पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। मामूली से संकल्प आपने किया सुबह कोई बात का और शाम तक वो हंस, कहते बाबा मेरी हर बात सुनता है, बाबा मेरी हर बात सुनता है, मेरी हर बात पूरी करता है, अनुभव है ना, है। तो अगर सामान्य से संकल्प पूरे हो सकते हैं तो जब अपनी कमजोरी को मिटाने के लिए आप कोई भी दृढ़ संकल्प करते हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं क्या? जरूर हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा उसके ऊपर अटेंशन की कमी हो जाती है, अटेंशन की कमी, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपने स्क्रू को टाइट करो, अटेंशन के पहरेदार को टाइट करो, लूज हो गए। जब अटेंशन के पहरेदारों को टाइट करेंगे तो रोज अमृत वेले उस संकल्प को बार बार रिवाइज करो और फिर देखो होता है या नहीं होता है, जरूर होता है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बाबा को नहीं कहो कि बाबा मेरा ये संकल्प पूरा, आप में इतनी ताकत है जो आप पूरा कर सकते हैं, बाबा को कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा आप मेरे पति का ताला खोलो, मेरे बच्चे का ताला खोलो या मेरा ये बंधन छुड़ाओ मेरे को, आप खुद ही सक्षम है। और ये जो नियम मर्यादाओं में बाबा ने हमें बांधा है, ये नियम मर्यादा में इसीलिए बांधा है ताकि आप जो चाहो आप खुद ही कर सकते हो, भगवान को बीच में अपने कर्मों के बीच में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, है ना? भगवान को लाने की जरूरत नहीं है, जहां उसकी जरूरत होगी वो स्वयं पहुंच जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए हमें उसको तकलीफ देने की आवश्यकता है क्या? बाबा ये पूरा करो ना, बाबा वो पूरा करो ना, इसका ताला खोलो ना, उसका ताला को कहने की जरूरत है नहीं। आप खुद ही सक्षम है, आप खुद दृढ़ संकल्प करो, कैसे नहीं? आत्मा को परिवर्तन करने की शक्ति रख सकते हैं, इतनी आप में ताकत है। ये नियम मर्यादाओं के कारण आप में इतनी ताकत है कि आप सिर्फ उस दृष्टि से और वो शक्ति से आप उस चीज का संकल्प करो, देखो वो होता है कि नहीं, हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है। तो संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए हमारे नियम मर्यादाएं बहुत बड़ा बल है, और उपवास हमारा इतना महान है जो उपवास हमारे अंदर इतना मनोबल क्रिएट करता है जितना कोई नहीं कर सकता है। तीसरा जो बाबा ने आधार बताया, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत साफ होनी चाहिए। और नियत साफ कैसे होगी? तो नियत साफ का कनेक्शन है सच्चाई से। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई। नियत साफ तो साफ कैसे रहेंगे? तो जब सच्चाई होगी तो सफाई तो रहेगी। और जिसके अंदर सच्चाई है तो सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूब नहीं सकती है। सच्चाई है तो कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान भी राजी हो जाता है। भगवान को सबसे प्रिय है ही सच्चाई सफाई। और अगर वही मेरी नियत में नहीं है तो फिर कोई मुराद हासिल नहीं हो सकती। आप साफ नियत से सच्चाई सफाई से कोई भी संकल्प निस्वार्थ भाव से जब करते हैं तो हर मुराद पूरी होती ही है। सारी कहा जाता है ना, सारी कायनात तो जुड़ जाती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसमें सच्चाई सफाई का इतना बल है, इतनी ताकत है। तो इसीलिए हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो सोचेंगे वो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे संशय नहीं लाओ, संशय बुद्धि विनश्यंती, लेकिन आप नियत साफ है, निश्चय बुद्धि है और दृढ़ता के साथ आप करो तो देखो कैसे पूरा होता है। कोई ऐसी बात नहीं सफलता मूर्त होने से आपको रोक सके। इतनी पावरफुल विधि बाबा ने हम बच्चों को बताई होगी। लेकिन जहां नियत में खोट आई वहां वो मुराद भगवान भी पूरी नहीं करने देगा, तो कोई शक्ति नहीं जो उसको पूरी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपने उसको हासिल करने के लिए टेम्पररीली भी या अल्पकाल के लिए भी अगर उसको महसूस भी किया, कुछ समय के बाद वो पलट जाएगी या वही हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान के बच्चे भोलेनाथ के बच्चे हैं, भोलेनाथ के बच्चे हैं तो बाबा को भोले बच्चे सच्चे दिल वाले बहुत पसंद है। जो हेरा फेरी करने वाले हैं, तीन पांच करने वाले हैं, इधर उधर करने वाले हैं, बाबा को कभी वो पसंद नहीं आता है। और इसीलिए आज नहीं तो कल वो अपनी इस गलत होशियारी के कारण भी कहीं न कहीं बाबा से धीरे धीरे दूर होने ही लगते हैं। वो कभी बाबा के समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। हमें तीन पांच करने की जरूरत क्या है? इधर उधर करने की जरूरत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि नहीं बाबा ने कहा है युक्ति युक्त तो करो, और इसीलिए युक्ति युक्त माना झूठ भी चल सकता है उसमें। युक्ति युक्त का मतलब झूठ नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। कई लोग इसीलिए झूठ का प्रयोग करते रहते, बाबा ने कहा ना युक्ति युक्त होकर के चलना है, नहीं ये भाव नहीं है बाबा का। बाबा के भाव को समझो कि अगर जहां कहीं पर भी आपको दो बातों में से एक बात चुननी पड़े, जो दोनों ही बात कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो तो वहां पर आप वही चुनो कि जहां पर सच्चाई सफाई वाली बात हो। उसको चुनो, क्योंकि वो आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाएंगे। कई बार हम झूठ का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं इसको थोड़ी पता चलने वाला है। अरे भगवान ने कहा है झूठ कभी छिप नहीं सकता है, आज नहीं तो कल वो किसी न किसी रूप से सामने आएगा। तब क्या करेंगे, तब लोगों के सामने क्या होगा, यही कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी वाले झूठ बोलते, देखो, कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो उससे कभी आप सफलता मूर्त नहीं बन पाते। जब कोई सीढ़ी चढ़नी हो, आपको मंजिल पर पहुंचना हो, और सीढ़ी अगर कमजोर हो, जो आधे तक पहुंचने पर टूट सकती है, तो मंजिल को प्राप्त कैसे कराएगी। इसीलिए अगर कोई भी कमजोरी का आधार लिया, झूठ एक कमजोरी है, असत्यता एक कमजोरी है, तो इसीलिए कोई भी कमजोरी का आधार लेकर के आप सफलता मूर्त कभी नहीं बन सकते। सफलता मूर्त मंजिल को प्राप्त करने के लिए आधार बहुत मजबूत चाहिए, और मजबूत आधार हमें कहाँ से मिलता है, वैल्यूज से। हम दुनिया के अंदर अगर एक मूल्यनिष्ठ समाज स्थापन कर रहे हैं, तो मूल्यों के अंदर जो शक्ति है, मूल्यों के अंदर जो ताकत है, वो ताकत ही हमें उस सफलता की मंजिल पर पहुंचाएगी। आप कमजोरी का सहारा लेकर के सफलता मूर्त बनना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है, दोनों विरोधाभास है। सफलता बहुत ऊंची मंजिल है, आधार लिया कमजोरी का, तो कमजोरी का आधार आपको आधे तक तो ले जाएगा, आपको लगता है हम सफलता मूर्त बन रहे, लेकिन आधे में ऐसा टूटेगा और गिरेंगे तो क्या होगा। मुंह दिखा नहीं सकते हैं उसके बाद कि ये भगवान के बच्चे हैं, मुंह दिखा नहीं सकते। और वो कोई न कोई रूप से, आज दुनिया ऐसी है जो सामने आती ही है। आप एक छोटे बच्चे के सामने भी झूठ बोल करके देखो, वो तुरंत आपको कहेगा आपने झूठ बोला ना, तुरंत कहता है कि नहीं कहता है, पहचान जाता है। आप एक बच्चे के सामने भी झूठ नहीं बोल पाते हैं, और फिर हम उसके बाद सोचते हैं बड़ी चालाकी के साथ हमने 3-5 किया, हेरा फेरी किया, ये किया वो किया, तो क्या लोग नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए व्यक्ति के अंदर जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, जितनी नीयत उसकी साफ होती है, और वैल्यूज का सपोर्ट लेकर के वो चलता है, उसको कभी कोई भी कहां भी हरा नहीं सकता है, असफल बना नहीं सकता है। वो सफलता की मंजिल को जरूर प्राप्त करता है, जरूर प्राप्त करता है। और जब ऐसे सफलता मूर्त बनता है, तो उसका कॉन्शियस कभी उसको बाइट नहीं करता है, और साथ ही साथ उसको हर समय एक अंदर से आत्मसंतुष्टि की, आत्मतृप्ति की अनुभूति होती है। नहीं तो हर वक्त उसका मन कचोटता रहेगा, मैंने ये किया तो है लेकिन पता नहीं, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा तो क्या होगा। मन कचोटता है, ऐसा काम ही क्यों करे, फिर योग लगेगा योग कभी लगेगा नहीं। इसीलिए जितनी अपनी नियत साफ है, भगवान को वही पसंद है, भगवान भी वही चाहता है। इसलिए नियत साफ मुराद हासिल, वो हर रीति से सफलता मूर्त बन करके ही रहेगा। और चौथी बात, सफल करो और सफलता पाओ। क्या क्या सफल करना है, क्या क्या सफल करना है। बड़ी दादी जब थी तो हमेशा कहती थी 500 सफल करो, 500 सफल करो। 500 कौन से, पहला स समय, अपना समय सफल करो। स समय को निष्फल नहीं करो, है ना। कहा जाता है आप अगर समय वेस्ट करते रहेंगे तो एक न एक दिन समय आपको नष्ट कर देगा। इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू, ये कहा जाता है। इसीलिए समय सफल करो। जितना समय सफल करते जाएंगे, समय का सदुपयोग करते जाएंगे, उतना समय हमें आगे बढ़ा देता है, बहुत ऊंचा उठा देता है। जितना समय निष्फल करते जाते हैं, उतना वो समय हमें अधोगति की तरफ ले जाता है। इसीलिए समय हमेशा आगे हमें बढ़ाए, इस तरह से समय को सफल करो। समय उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो अपने समय को सफल करता है। वेस्ट न जाने दो समय, बहुत वैल्यूबल है। टाइम इज वैल्यूबल, टाइम इज मनी, लोग यही कहते हैं। तो इसीलिए ये समय का धन जो है उसको सफल करो, तो सफलता मूर्त हो जाएंगे। दूसरा सा संकल्प, संकल्प को व्यर्थ और नकारात्मक नहीं होने दो, जाने दो, क्योंकि ये संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जितने हमारे संकल्प समर्थ होंगे उतना संकल्प सफल होगा। कोई भी अच्छी बात के लिए जब भी आप संकल्प करेंगे वो संकल्प अवश्य पूरा होगा। जितने नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प भी करते जाएंगे उतना वो खुद के सामने आना जरूर है, विघ्न के रूप में बहुत ऐसी बातें सामने ले आएगा। इसीलिए कभी कभी कई लोग जो विघ्न खड़े करते हैं ना, अपने संकल्पों से खड़े करते हैं, संकल्प ही ऐसे करते हैं, नेगेटिव संकल्प चलाते रहेंगे तो पवित्रता की शक्ति जब नेगेटिव संकल्प को मिलेगी तो वो भी तो पूरे होंगे, इसलिए वो विघ्न रूप में सामने आते हैं। बहुत अच्छा, अभी किसी ने जो रिसर्च किया उसके ऊपर बताया, आप लोगों में से कई लोगों ने किताब पढ़ी होंगी, एक दुनिया के व्यक्ति ने रिसर्च किया है और किताब लिखी है सीक्रेट, पढ़ी होंगी आप लोगों में से कईयों ने। और उसमें उसने यही बात रिसर्च किया कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो नहीं शब्द को रिकग्नाइज नहीं करता है। इसीलिए जब आप कोई बात सोचते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना, अब हमारा दिमाग नहीं शब्द को पहचानता नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं निकाल देता है, या ना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसलिए होता है, इसलिए होता है। सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जिस दिन आप सुबह अमृत वेले उठ करके बाबा के सामने संकल्प करते हो कि बाबा आज मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नई शब्द पहचानता ही नहीं है। क्यों नहीं पहचानता है? उसका जो मेरे हिसाब से जो मैंने चिंतन किया कि क्यों नहीं शब्द नहीं पहचानता है दिमाग हमारा, क्योंकि ये कलयुगी लैंग्वेज है, नहीं शब्द जो है ये कलयुगी लैंग्वेज है। और बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक, है ना। दूसरी बात जो बाबा ने हम बच्चों को समझाई है कि जो नहीं कहता है वो कोई न कोई बात के राज को जानता नहीं, इसलिए नहीं कहता है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, है ना? और इसीलिए वो राज को जानता नहीं है, इसलिए नहीं कहता है। जो राज को जानता हो, हर बात का राज जानता है, वो उसको स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब हमारा दिमाग नई शब्द नहीं पहचानता, क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि हम सब सतयुगी आत्माएं, और सतयुग में, सतयुग की डिक्शनरी में शायद नहीं शब्द है ही नहीं। अब 2500 साल जो उस सात्विक लैंग्वेज में रहे हो, उस सात्विक प्रकृति से काम करते रहे हो, वो अगर अभी आकर कहे ये नहीं होना चाहिए, तो उसका दिमाग नई शब्द नहीं पहचानता है, क्योंकि वो सतयुगी आत्माएं हैं। इसीलिए उनके साथ वो होता है। इसलिए कहने का भाव कि कुदरत ने जो रचना रची है, हमारे मन बुद्धि ब्रेन आदि की भी जो रचना रची है, उस रचना के अंदर, क्योंकि सभी ओरिजिनल प्योर आत्माएं हैं, चाहे कलयुगी आत्माएं भी, लेकिन परमधाम में जब बैठी होती है तो प्योर स्वरूप में होती है ना। तो इसीलिए जो प्योर आत्माएं हैं ओरिजिनली अनादि स्वरूप में, उसके दिमाग के अंदर नहीं शब्द नहीं होता ही नहीं है, नेगेटिव शब्द होता ही नहीं है। लेकिन ये तो आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई, तब हमने नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ये नई शब्द का प्रयोग कर, ये तो अभी के जीवन का है, ये लास्ट के जीवन का है। नई शब्द का प्रयोग जो है, आज से 50 साल पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो नई शब्द का प्रयोग नहीं, क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, वो कोई चीज के लिए मना नहीं करते थे। ये तो अभी की जनरेशन है जिसको कोई भी काम करो नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, उसके 10 सवाल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं रही है। और इसीलिए जब हम सतयुगी आत्माएं हैं, और वो अगर संकल्प करे कि ये नहीं होना चाहिए, बाबा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे गुस्सा नहीं आवे, अब बाबा से शक्ति ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं शक्ति? गुस्से को। वो शक्ति किसको मिल रही है? क्रोध को मिल रही है, इसलिए ज्यादा क्रोध आता है दिन भर में, क्योंकि आपने शक्ति ही लिया क्रोध, नहीं शब्द को तो ब्रेन ने पहचाना नहीं। तो मुझे क्रोध आना चाहिए, मुझे क्रोध आना चाहिए, मुझे क्रोध आना चाहिए, बाबा शक्ति दो मुझे क्रोध आना चाहिए, तो शक्ति किसको मिली? क्रोध को। इसीलिए सबसे ज्यादा क्रोध, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी दिन आता है, ठीक है ना? तो आज के बाद नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करो। अगर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बाबा से शक्ति लेनी है, तो ये संकल्प करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आज सारा दिन मेरा शांति में रहना चाहिए। ये पॉजिटिव संकल्प है, ये पॉजिटिव संकल्प। तो फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना भी हो जाएगी तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो बाबा से सकाश शक्ति ली है, वो शांति के स्वरूप को दिलाई है। और जब शांति के स्वरूप को दिला, तो आपका मन शांत रहेगा। तो इसीलिए संकल्प को सफल करना, माना हर संकल्प के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा समाई हो, नेगेटिव और वेस्ट संकल्प निर्माण करना, ये भी बाबा के महावाक्य के हिसाब से एक प्रकार की अपवित्रता है, अपवित्रता है। तो समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, और संकल्प में नहीं शब्द को नहीं आने दो, तभी वो सफल होगा। तीसरा, श्वास सफल हो। श्वास सफल करने से क्या होगा? जितना बाबा कहते हैं अजप अजप निरंतर याद में एक एक श्वास हमारे सफल हो, तो श्वास सफल करने से अंतिम श्वास सुखदायी निकलेगा, अंतिम श्वास सुखदायी होगा। कभी कोई भी घुटन में श्वास छोड़ना नहीं होगा। जैसे आज कई बार किसी का भाई तालाब में डूब गया और डूबने के समय ये जब पानी ज्यादा कितना घुटन होती होगी, उस समय भगवान की याद थोड़ी आती होगी, तो कैसे सांस निकले। तो इसीलिए जो अपने श्वासों को सफल करता है वो कभी भी अंतिम श्वास उसका घुटन में नहीं निकलेगा, लेकिन हर श्वास सुखदायी स्थिति में शरीर छोड़ने का भी होगा। इसलिए बाबा कहते श्वासों को सफल करो। चौथा सा शक्ति, शक्ति को सफल करो। जो भी हमें शक्ति प्राप्त हुई है बाबा से, तन की शक्ति है सफल करते हैं, मन की शक्ति है सफल करते हैं, तो शक्ति सफल करो आप। तो जब शक्ति सफल करते हैं तो आपको ईश्वरीय शक्ति और अधिक प्राप्त हो जाती है। जितना ईश्वर के नाम में उसको सफल किया उस शक्ति को, तो बाबा ने एक मुरली चलाई है कि जब आप तन से सेवा करते हो यानी तन की शक्ति सफल हुई तो आपका तन निरोगी होने लगेगा। आपकी मनसा शक्ति जितनी शुद्ध पवित्र संकल्प शुभ भावना शुभ कामना संपन्न होगी उतना आपकी मनसा शक्ति सफल होने के कारण मनोबल इतना बढ़ता जाएगा। तो जो भी शक्ति बाबा से मिली, अष्ट शक्तियां मिली है, ये अष्ट शक्तियों को सही समय पर सफल करने से अष्ट रतन में आ जाते, ये भगवान का वायदा है कि वो आत्मा अष्ट रतन में जरूर आएगी। तो अष्ट शक्तियों को सफल करते चलो, सफल करते चलो। और लास्ट में आता है पांचवा स संपत्ति। जो भी धन संपत्ति आदि स्थूल में, सबसे स्थूल ग्रॉस लेवल पर ये संपत्ति आती, ये सारी सूक्ष्म स्तर पर, समय सबसे सूक्ष्म होता है, फिर संकल्प, फिर श्वास, फिर शक्ति, और लास्ट में सबसे स्थूल लेवल पर ग्रॉस लेवल पर है संपत्ति। और देखा गया जितनी धन संपत्ति जो सफल करता है वो सफलता मूर्त तो बनता ही है, लेकिन उसकी वृद्धि भी करता है, उसकी वृद्धि होती है। उसकी धन सफल करना ये बाबा ने इसलिए हम बच्चों को एक विधि बताई है क्योंकि उसी से भी कई प्रकार के हमारे जीवन के अंदर जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को हम सहज ही साइड कर सकते, कई प्रकार के कष्टों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने ये विधि बताई है कि धन संपत्ति को भी सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफल करने से क्या होता है, सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जो बाबा के बच्चे धन सफल करते हैं वो 63 जन्म में, सत्युग त्रेता में तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन द्वापर से लेकर कलयुग तक वो कभी भिखारी का जन्म नहीं प्राप्त करे। उसको किसी के आगे हाथ फैला के मांगना नहीं पड़ता है क्योंकि उसने भगवान के कार्य में धन सफल किया हुआ है। तो भगवान इतना तो जरूर उसको देता ही है कि कोई जन्म उसका भिखारी का नहीं होगा, कोई जन्म भिखारी का नहीं। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है धन सफल करने की। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि शास्त्र में कहानी आती है कि सुदामा और कृष्ण बचपन में दोस्त थे, और जैसे ही दोस्ती में आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में रहते थे तो गुरुकुल में होने कारण उनको कभी कभी लकड़ी काटने का टर्न आता था। सभी विद्यार्थियों का टर्न होता था कि लकड़ी जंगल से ले आए, ताकि आश्रम का जो भी कारोबार है, खाना पकाना, उस जमाने में तो लकड़ी से ही होता था। तो शास्त्रों में कहानी कितनी अच्छी दिया हुआ होता है। तो कहा कि जब उनका लकड़ी काटने का, जंगल में जाकर लकड़ी ले आने का टर्न था, तो उस दिन सुदामा की माँ ने उसको 40 चने दिए गिनती करके, क्या तुम लोग लकड़ी काटने जाएंगे तो इसीलिए ये 40 चने हैं। वो तो गरीब था सुदामा, तो 40 चने उसकी माँ ने गिनती करके दिए कि 20 तेरे 20 कृष्ण के, तुम खा नहीं जाना, कृष्ण को देना ही उनके 20 है, गिनती करके दिया। और जब गए लकड़ी काट करके, जब वापस लौट रहे थे तो कृष्ण बहुत थक गया, तो उसने झाड़ के नीचे कहा मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। वो सो गया तो सुदामा ने कहा ठीक है सो जाओ, मेरे को तो नींद नहीं आ रही है। वो बैठा तो फिर जो है उसको भूख लगी, तो उसको अपने 20 चने याद आए, तो उसने अपने 20 चने निकाले खाए। लेकिन अभी सारा दिन इतना लकड़ी चुनने में जब गए थे तो भूख तो ज्यादा लग गई कि 20 चने से क्या होगा। तो और मन हो रहा था 20 चने जो पड़े हैं, कृष्ण तो सो रहा है, तो उसने धीरे से एक निकाल करके उसमें से खाया, दो निकाल के खाया, तीन निकाल के, अभी तक कृष्ण तो उठ ही नहीं रहा है, तो सारे 20 उसके भी खा गया। तो कहा उसने जो 20 चने कृष्ण के खाए थे, तो उसका फल क्या मिला कि 20 साल दरिद्रता का उसको भोगना पड़ा। 20 साल एक एक चने का एक एक साल हिसाब था, तो 20 साल दरिद्रता का गुजारा। और 20 साल दरिद्रता का गुजारने के बाद उसकी पत्नी ने, जैसे ही वो समय पूरा हुआ कि उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त इतना बड़ा है, तुम जाओ उसके पास। तो कहा कैसे जाऊं मैं उसके पास में, क्या लेकर जाऊं, खाली हाथ तो जा नहीं सकता हूं। तो कहा ये पोहा ही ले जा, है ना, और इसीलिए पोहा दिया उसको और भेजा कोटली में रख के, और वो निकाल नहीं रहा था। तो कृष्ण से जब मिला तो कृष्ण ने कहा कि मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा मेरे लिए, ऐसा तो तुम आया नहीं होगा, क्या है निकाल निकाल करके निकाला। और पहली मुट्ठी खाई और उसको महल मिल गया, दूसरी मुट्ठी खाई तो उसको धन संपदा आदि सबसे भरपूर कर दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने तब रुक्मणी ने रोका, सब कुछ दे देना है क्या। ये देखो कितनी शास्त्र के अंदर एक्यूरेट कहानी है कि एक पोहा सफल करने पर भी उसको कितनी प्राप्ति का अनुभव। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि कई गरीब माताएं जो आती है बाबा के यज्ञ में, बाबा हमारी एक ईंट सफल कर देना। मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक बहन आई थी कि दादी जी के पास में, प्रकाशमणि दादी के पास आई थी, और प्रकाशमणि दादी को उन्होंने एक अंगूठी पहनाई। कहा दादी ये अंगूठी जो है ना, एक माता है, बहुत गरीब है, लेकिन बाबा की इतनी पक्की बच्ची है, मधुबन कभी आई नहीं है। और मधुबन आई नहीं है, ओम शांति भवन बन रहा था उस समय, तो दादी ने कहा था कि भाई हर एक 25 पैसा लगाना। तो उसने प्रतिदिन के 25 पैसे रोज बचाती रही बचाती रही, एक साल तक बचाती रही, और जो उससे बचा तो उसने सोचा कि मैं मधुबन की टिकट, मधुबन नहीं जाऊंगी, लेकिन ओम शांति भवन में मेरी ईंट जरूर लगनी चाहिए। तो उससे उसने अंगूठी खरीदी और अंगूठी भेजी बहन जी के साथ में कि बहन जी ये अंगूठी मेरी दादी को देना और कहना मेरी ईंट जरूर लगा दे। दादी को जब वो अंगूठी पहनाई, दादी की आंखों में इतने आंखें भर आई थी दादी की कि वो माता अभी तक मधुबन नहीं आई है, और ओम शांति भवन की ईंट के लिए उसके बाद दादी वो अंगूठी पहनकर क्लास में आई और सबको दादी दिखाती रही, देखो दादी को आज अंगूठी मिली है, दादी को आज अंगूठी मिली है। और ये किसने भेजी है पता है? बाबा के गरीब बच्चों ने भेजा है। अब आप सोचो कि बाबा तो बोले उसने सोने की अंगूठी इसलिए भेजी थी, बाबा हमको सोने के महल देंगे तो मेरा ये ओम शांति भवन में एक ईंट जो लगेगी तो वो ईंट बाबा किस रूप में देगा, तो जरूर है। कहने का भावार्थ कि जिसने भी अपने धन को सफल किया वो धीरे धीरे किस तरह से भगवान भी उसके लिए बंधा हुआ है उसको देने के लिए, तो धन सफल करने वालों पर भगवान हमेशा मुरली में भी कहता है कि कई गरीब बाबा के बच्चे कुछ कर्मों के हिसाब किताब के कारण आई ये समय आया है, लेकिन फिर भी भिखारी नहीं बने हैं। इसलिए कहा धन सफल जिसने किया वो कभी भिखारी नहीं बनता है। जिंदगी में कोई जन्म उसका भिखारी का नहीं होता, इतनी तो ईश्वर की गारंटी है। जो बाबा ने कहा है उसको दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा मैं, भूखा नहीं सुलाता है, दाल रोटी भी खिलाता है। बेगरी पाठ में भी, यज्ञ में भी बेगरी पाठ आए तो सभी को डोडा छाछ भी जरूर खिलाया और किसी को कुछ नहीं हुआ। ठंडी में भी लोगों ने खाया, कैसे भी खाया, लेकिन कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दिया। तो इसीलिए संपत्ति को जिसने सफल किया उसको कई जन्मों की प्राप्ति तो होती ही है। सतयुग त्रेता की प्राप्ति तो अलग चीज है, लेकिन द्वापर कलयुग की भी ये इतनी बड़ी प्राप्ति उसको होती ही है। तो इसीलिए 500 सफल करना और सफलता मूर्त